नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने कहा 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना का लाभ मिलेगा। उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा केंद्र ने पंचायती राज संस्थाओं के लिए 1170 करोड़ रुपए से अधिक का अनुदान दिया। राज्य सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दलहन और मक्का की भी खरीद करेगी। और पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में डेंगू के 98 नए मामलों की पुष्टि, पटना में सबसे अधिक 44 मरीज मिले। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य कवरेज देने को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी।
प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 70 वर्ष की आयु के ऊपर के हर बुजुर्ग को आयुष्मान योजना के दायरे में लाया जाएगा और 70 साल के ऊपर के हर बुजुर्ग, चाहे वो गरीब हो, चाहे मध्यम वर्ग के हो, चाहे उच्च मध्यम वर्ग के हो, ये नया दायरा होगा जिनको 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी और इससे देश में करीब 4.5 करोड़ फैमिलीज, जिसमें करीब 6 करोड़ सीनियर सिटीजन कवर होंगे।
केंद्र सरकार ने 31,350 मेगावाट की जल विद्युत परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। इसके लिए 12,461 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वर्ष 2024-25 से 2031-32 तक इन योजनाओं को लागू किया जाएगा। इधर मंत्रिमंडल ने 2 साल की अवधि में 10,900 करोड़ के परिव्यय के साथ पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि इस योजना में अब ई वाउचर शामिल होंगे जो इलेक्ट्रिक वाहन खरीद प्रक्रिया को सरल बनाएंगे। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरणों की ओर से ई बसों की खरीद और संचालन के लिए 2024-25 से 2028-29 की अवधि के लिए पीएम ई बस सेवा भुगतान सुरक्षा तंत्र योजना को भी मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने 25,000 असंबद्ध बस्तियों को जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4 के कार्यान्वयन का आदेश जारी किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मौसम पूर्वानुमानों और जलवायु संबंधी जानकारी में अधिक सक्षमता हासिल करने के लिए मिशन मौसम योजना को मंजूरी दे दी है। यह योजना 2 वर्षों में 2,000 करोड़ रुपए के परिव्यय से लागू की जाएगी। इससे कृषि, आपदा प्रबंधन, रक्षा, पर्यावरण, विमानन, जल संसाधन, बिजली, पर्यटन, नौवहन, परिवहन, ऊर्जा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ होगा। केंद्र सरकार ने राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के लिए 1170 करोड़ रुपए से अधिक का अनुदान दिया है। उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर यह अनुदान मिला है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल, कचरा प्रबंधन और ओडीएफ जैसी बुनियादी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। राज्य की सभी ग्रामीण सड़कों का निरीक्षण किया जाएगा। मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने कहा कि अगले 15 दिन में इस कार्य को पूरा किया जाएगा। इस संबंध में अधिकारियों और अभियंताओं को निर्देश दिए गए हैं। ग्रामीण कार्य विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि निर्धारित समय में निरीक्षण नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। श्री मीणा ने ग्रामीण सड़कों की पंचवर्षीय मरम्मत अवधि के तहत 65,000 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत के भी निर्देश दिए हैं। खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के मंत्री लेसी सिंह ने कहा है कि खरीफ मौसम के लिए इस वर्ष नवंबर में धान की खरीदारी शुरू हो जाएगी। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने बताया कि राज्य सरकार धान और गेहूं के अलावा दलहन और मक्का की भी केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद करेगी। वर्ष 2023-24 में 30.8 लाख मीट्रिक धान की खरीद की गई। राज्य में राशन कार्ड का ई केवाईसी कराने के लिए विशेष अभियान चलाया जायेगा। खाद्य और उपभोक्ता विभाग के सचिव डॉक्टर एन सरवण ने बताया कि त्योहारों के मौसम में प्रवासियों की सुविधा के लिए यह अभियान शुरू किया जायेगा। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी के अलावा अन्य सभी स्थानों पर रह रहे प्रवासी ई केवाईसी और आधार सीडिंग करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि अभी 2,15,000 आवेदन जांच के लिए भेजे गए हैं, जल्द ही नए लोगों का राशन कार्ड बना दिया जाएगा। कृषि विभाग खरीफ फसलों की क्षति पर 20,000 रुपए तक का मुआवजा देगा। इसके लिए निबंधित किसान 31 अक्टूबर तक बिहार राज्य फसल सहायता योजना के पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। जो किसान ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकेंगे वे कॉल सेंटर पर फोन कर मदद ले सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज सारण जिले के मढ़ौड़ा में 20 से अधिक योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इनमें पॉलिटेक्निक कॉलेज छात्रावास, आईटीआई में बनी वर्कशॉप, 12 सड़क और पुल पुलिया तथा अन्य योजनाएं शामिल हैं। प्रदेश में 2 दशकों से लंबित आरा मिल की वरीयता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रेम कुमार ने वन अधिकारियों को आरा मिल संचालकों को लाइसेंस जारी करने के निर्देश दिए हैं। आरा मिल से संबंधित विषय पर समीक्षा बैठक के दौरान इस साल अक्टूबर नवंबर में सभी चयनित आरा मिल संचालकों को लाइसेंस निर्गत करने का फैसला लिया गया। राज्य में 29 अक्टूबर से मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण कार्य शुरू किया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में कार्यक्रम जारी किया है। इस दौरान अभियान चलाकर मतदाताओं के दावे और आपत्ति प्राप्त किए जाएंगे। सूची में नए नाम शामिल करने के लिए 1 जनवरी 2025 को योग्य मतदाता होने की अर्हता निर्धारित की गई है। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन अगले वर्ष 6 जनवरी को किया जाएगा। इस बीच अभी बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ घर घर जाकर मतदाता सूची के अनुसार मतदाताओं की पहचान कर रहे हैं। ये काम 18 अक्टूबर तक किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Patna पर जा सकते हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि विभिन्न मौसमी कारकों के प्रभाव से कल से प्रदेश में कई स्थानों पर अच्छी बारिश की संभावना है। विभाग ने कल गया, नवादा, जमुई, बांका और किशनगंज जिले में बारिश का अलर्ट जारी किया है, जबकि 14 सितंबर को कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल और गया जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि आज पटना, समस्तीपुर, बेगूसराय, सीवान, बक्सर, भोजपुर, रोहतास और कैमूर समेत आसपास के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। प्रदेश में डेंगू के नए मामले लगातार मिल रहे हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 98 नए मामलों की पुष्टि हुई है। पटना में सबसे अधिक 44 नए मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इस वर्ष अब तक डेंगू के 1,228 मामले सामने आ चुके हैं। बिहार डाक परिमंडल से जुड़ी डाक सेवाओं से संबंधित शिकायतों के निपटारे के लिए विभाग आगामी 30 सितंबर को डाक अदालत का आयोजन करेगा। पटना में मुख्य पोस्टमास्टर जनरल के कार्यालय स्थित सभाकक्ष में पूर्वाह्न 11:30 बजे से इसका आयोजन होगा। इच्छुक लोग अपनी शिकायतों के निष्पादन के लिए 17 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन सहायक निदेशक लोक शिकायत मुख्य पोस्टमास्टर जनरल कार्यालय बिहार परिमंडल पटना के नाम से स्पीड पोस्ट या निबंधित डाक से भेजा जा सकता है। दक्षिण मध्य रेलवे के विजयवाड़ा, काजीपेट, बल्लारशाह खंड पर लाइन कमीशनिंग कार्य के चलते बरौनी, एर्नाकुलम समेत 31 रेलगाड़ियां 8 अक्टूबर तक रद्द रहेंगी। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि इसके चलते सिकंदराबाद दानापुर एक्सप्रेसवे समेत 5 रेलगाड़ियों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जाएगा। वहीं त्योहारों पर यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने दिल्ली दरभंगा, मुजफ्फरपुर आनंद विहार, सियालदह गोरखपुर और कटिहार अमृतसर के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। ये रेलगाड़ियां 5 अक्टूबर से 1 दिसंबर तक चलाई जाएंगी। मोकामा स्थित राजेंद्र सेतु पर आज रात 10 बजे से कल सुबह 6 बजे तक वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। पुल निर्माण कंपनी के अनुसार स्पैन संख्या 12 पर मरम्मत कार्य के कारण वाहनों का परिचालन बंद किया जाएगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय इग्नू ने जुलाई सत्र के लिए नामांकन तिथि 20 सितंबर तक बढ़ा दी है। इच्छुक अभ्यर्थी इग्नू प्रवेश पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के तत्वावधान में आयोजित अंतर महाविद्यालय कबड्डी प्रतियोगिता के फाइनल में पटना के जेडी विमेंस कॉलेज ने एएन कॉलेज को पराजित कर खिताब पर कब्जा जमा लिया। जेडी विमेंस कॉलेज की खिलाड़ी दिव्या रंजन को बेस्ट रेडर का पुरस्कार मिला है। गंगा देवी कॉलेज को तीसरा स्थान मिला है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत एमएसएमई विकास कार्यालय पटना द्वारा कल से स्थानीय गांधी मैदान में प्रदर्शनी सह व्यापार मेले का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी इस मेले का उद्घाटन करेंगे। ये मेला 15 सितंबर तक चलेगा। पूर्णिया जिले के अमौर प्रखंड के झवारी पैक्स में 1.5 करोड़ रूपये की धान खरीद के मामले में गबन के आरोपी 9 लोगों पर जलालगढ़ थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। अमौर के सहकारिता पदाधिकारी सुजीत कुमार ने बताया कि जांच के बाद यह कार्रवाई की गई। शिवहर जिले में वन विभाग ने 17 अवैध आरा मिलों को सील कर दिया है। वन विभाग के अधिकारी नवरत्न कुमार झा ने बताया कि अवैध आरा मिलों की मशीनों को जब्त कर लिया गया है। नालंदा जिले में पुलिस ने लूट के ट्रक के साथ 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। अररिया जिले की बौसी थाना पुलिस ने मादक पदार्थ के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पश्चिम चंपारण जिले के सिकटा थाना क्षेत्र में पुलिस ने 10,000 रूपये जाली नोट के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने पटना बम ब्लास्ट मामले में उच्च न्यायालय के फैसले को बड़ी खबर बनाया है। अखबार लिखता है 4 दोषियों की सजा फांसी से 30 साल कैद में बदली। नरेंद्र मोदी की 2013 में गांधी मैदान रैली के दौरान हुए थे सिलसिलेवार धमाके। दैनिक जागरण ने गृहमंत्री अमित शाह के बयान को प्रमुखता देते हुए लिखा है, देश विरोधी बातें करना और देश को तोड़ने वालों के साथ खड़े होना राहुल की आदत। दैनिक भास्कर का शीर्षक है, राज्य में मृत लोगों के नाम पर भी ले रहे थे अनाज, 16 करोड़ 37 लाख राशन कार्ड रद्द, ईकेवाईसी से हुआ खुलासा। प्रभात खबर ईडी की एक कार्रवाई पर लिखता है, संजीव और गुलाब से जुड़े कोलकाता, दिल्ली और मुंबई के 3 लोगों के ठिकानों पर दबिश। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने कहा, 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना का लाभ मिलेगा। उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, केंद्र ने पंचायती राज संस्थाओं के लिए 1170 करोड़ रुपए से अधिक का अनुदान दिया। राज्य सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दलहन और मक्का की भी खरीद करेगी। और पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में डेंगू के 98 नए मामलों की पुष्टि, पटना में सबसे अधिक 44 मरीज मिले। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।